मेरी दो जवान बेटियां हैं, उन्हें जहां भी जाना होता है इस लड़के के साथ जाती हैं। ये लड़का भी अपनी औकात और हैसियत नहीं जानता है, बेशर्म लड़का है। मैं अच्छा नहीं समझता हूं कि दो जवान बेटियों।
तुम्हें पता है तुम किस तरह के हो साबिर?
नहीं बाबा।
बिल्कुल एक ठेले वाले की तरह। कभी ठेला देखा है तुमने? किसी वक्त में मेरे पास एक ठेला था, एक साल तक चलाया है उसे। बाहर में बड़े बादाम और टमाटर ले जाया करता था, सर्दी में सेब चेरी और आलू बुखारे बेचता था, और खिजा में दो किस्म के फल बेचा करता था। जब गर्मी आती थी तो कुछ और बेचा करता था। मुख्तसर यह है, हर मौसम में उस मौसम का फल बदल बदल कर बेचते थे। तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह हो साबिर।
बताना पसंद करेंगे क्यों?
बिल्कुल बता सकता हूं। जब भी कुछ होता है तो तुम्हें बहाना नहीं मिलता, घर में सब उल्टा सीधा करने लगते हो। अपनी बेटियों के कपड़े तो सही करवा नहीं सकते हो तुम। नीचे से दामन कैंची से कटा है और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो। सालगिरह हो, ईद हो, शादी ब्याह हो, या इस घर में कुछ भी हो, इस घर को रात से लेकर सुबह तक जगाए रखते हो। जब नजर ही रखनी है तो अपनी बेटियों पर रखो कि क्या करती है। अपने चेहरे पर पता नहीं क्या क्या लगाकर बाहर निकलती है। एक दिन पता लग जाएगा। क्या भूल जाते हो तुम के स्कार्फ सर ढापने के लिए है, ना कि ये उसको सर का ताज बना दिया जाए। काश तुम्हें एहसास हो के हर महीने 7,000 रुपए अपनी बेटियों के टेलीफोन का बिल अदा करते हो। सुनो, इतनी हिम्मत नहीं कि पूछ सको कि इन 7,000 रुपए में तुम्हारी बेटियां किस किस से बातें करती रहती हैं। काश कि तुम समझ सको, गर्मी में गर्मी के मौसम की तरह और सर्दी में सर्दी के मौसम की तरह रहना पड़ता है। सुनो, उस लड़के में 100 लड़कियों से ज्यादा शर्म मौजूद है।
उन्हें बताया?
नहीं।
हमें उन्हें बताना होगा।
आखिर मैं कैसे बताऊं?
तुम्हें उन्हें बताना होगा आतिफा, जिस तरह भी हो बस उन्हें बताओ।
ये शादी रोकनी होगी।
लेकिन मुझे क्यों ये शादी रोकनी होगी? तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना?
अगर तुम शादी नहीं रोकोगी, जो शादी करोगी वो बातिल होगी।
तुम पागल हो गई हो
सताइश?
अगर ये मजाक कर रही हो तो बहुत ही घटिया मजाक है। अगर तुम मुझे तंग करना चाहती हो तो
सताइश, तुम यकीन करो मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ।
यकीन कर लूँ? तुम्हारी इन बकवास बातों पर मैं कैसे यकीन कर लूँ? कुछ ही दिनों बाद मेरी बेटी की शादी और तुम कह रही हो कि शादी रोक दूँ?
सताइश एक मिनट सुन तो लो, मैंने तुम्हारी बात मुर्तजा को बताई है।
सब कुछ बता दिया?
सब कुछ।
उसके बाद भी तुम खुद को मेरा दोस्त समझती हो?
सताइश वो मेरा शौहर है।
मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ।
मुझे मालूम है।
तुम्हें मालूम है फिर भी तुमने मेरी जिंदगी के बारे में अपने शौहर को सब कुछ बता दिया।
मैं अपने शौहर से झूठ नहीं बोल सकती। हमने पहले दिन से ही वादा किया है कि हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। इतने दिन से मैंने उनसे जो कुछ छुपाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आग में जल रही हूँ।
इस वजह से कि तुम्हें आग में जलना नहीं पड़े, तुमने मेरी जिंदगी को किसी तोहफे की तरह सजाकर अपने शौहर के सामने रख दिया है। आतफा हम यहाँ से जा रहे हैं, मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आतफा तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
सताइश
अम्मी जान, आखिर तुमने ये सब?
सताइश क्या हो गया है?
हम यहाँ से जा रहे हैं, जाओ तुम अपना सामान समेट लो।
लेकिन क्यों अम्मी, क्या हुआ है?
माफ कीजिएगा मेरी बहन, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं?
मैं आपसे माजरा चाहती हूँ, हमने यहाँ रहकर आपको बहुत तकलीफ दी। लेकिन अब
सिर्फ कुछ देर बस आपका वक्त लूंगा, मेहरबानी करें।
तुम ऊपर जाओ अपना सामान समेटो, सिर्फ कुछ मिनट के लिए।
बिल्कुल आइए।
खाला क्या हुआ है?
आतिफा तुम भी ऊपर चली जाओ, परेशान नहीं हो?
कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ।
बैठ जाइए मेरी बहन, बैठ जाइए।
नहीं, यहीं पर ठीक है। आप मेहरबानी करके बताएं क्या कहना है।
जैसे आपकी मर्जी। मैं सोच रहा था कि शरीयत तौर पर
आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप शरीयत को अच्छी तरह समझते हैं और जो कुछ भी कह रहे हैं वो शरीयत के मुताबिक है और सब लोग बेवकूफ हैं? आप क्यों सोच रहे हैं कि सब लोग काफिर और खुदा को नहीं मानते और सिर्फ आप हैं जो सिर्फ खुदा के बंदे और खुदा आप ही का है? मुर्तजा भाई, मैंने अगर ये
बहन, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। जानता हूँ कि आप हमेशा नमाज टाइम पर पढ़ती हैं। आतफा ने मुझे बताया है आपका घराना बहुत मजहबी था और आपके वालदैन बहुत मोमिन थे।
तो फिर शरीयत को मेरी तरफ क्यों मोड़ रहे हैं?
शरीयत को किसी तरफ मोड़ा नहीं जा सकता है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ सोच रहा था कि एक भाई की हैसियत से जो बातें जरूरी हैं वो आपको बता दूं
ताकि मैं समझ सकूं। मुर्तजा भाई, मुझे किसी के भी समझाने की कोई जरूरत नहीं।
सच्चाई जानने के बारे में क्या कहेंगी?
कैसी सच्चाई? जो सच्चाई आपको आतफा ने बताई वो 20 साल पुरानी है। ये सच है कि अपने बच्चों को उनके दादा से लेकर भाग गई थी और सारी जिंदगी लापता जगहों पर गुजारी है। लेकिन इस वक्त जो सच्चाई है वो मेरे सामने नाजगुल है। कुछ दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, इसके अलावा कोई सच्चाई मेरे सामने नहीं है। इस बारे में आपको मुझे कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि कोई आकर मुझे ये कहे कि उस वक्त तुमने गलत किया था या सही। मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं चलती हूँ।
सताइश बहन, मैंने अभी अपनी बात की ही नहीं है।
जी फरमाइए, बोलिए।
आपने शायद कानून को बेवकूफ बना दिया हो। ये बात कि आपका काम सही था या नहीं, मैं इसकी बात नहीं करूंगा। जैसा कि आप कह रही हैं, मैं इसके बारे में बोलूंगा भी नहीं। लेकिन आप शरीयत को बदल नहीं सकती।
मतलब क्या है कहने
मेरे का? कहने का मतलब यह है कि अगर आपने अपनी बेटी की किसी से भी शादी करेंगी और उसका जो भी नाम रखा हो, चाहे उसका असली नाम हो या नकली नाम हो जो आपने रखा हो, ये शादी बातिल है, शरीयत की नजर में बातिल है।
नामुमकिन है। मेरी बेटी के पास एक शनाख्ती कार्ड है, वो शनाख्ती कार्ड के जरिए
आपकी बेटी का भी एक दादा मौजूद है जो उसका सगा दादा है, जो जब तक इजाजत नहीं देगा आपकी बेटी की शादी शरी तौर पर और कानूनी तौर से बातिल है। आप कानून की नजरों से छुप गई थी, खुदा की नजरों से तो आप छुप नहीं सकती। यहाँ तक कि ये निकाह पढ़ा भी दिया जाए और 100 अफराद गवाह उसके नीचे दस्तखत कर दें तो शरी लिहाज से बातिल है।
ये किसने कह दिया?
शख्स जिसने कहा है अन निकाह सुन्नती।
आप झूठ कह रहे हैं ना?
नहीं।
मैं समझ रही थी ये तूफान खत्म हो चुका है, समझ रही थी खत्म हो चुका होगा।
एक परेशानी हमेशा रास्ते में छुपी खड़ी रहती है, जब कोई गलत रास्ते पर चलता है तो परेशानी हमेशा रहती है, सिर्फ सिर्फ आंखों से ओझल रहती है।
मैं गलत रास्ते पर नहीं थी, मैं सिर्फ चाह रही थी कि मेरे बच्चों को ऐसे शख्स के साए से नहीं मालूम था कि वो अभी भी जिंदा है।
मेरी बहन, मैं सारी बातें अच्छी तरह जानता हूं।
तो फिर ये भी जानते होंगे कि मैं मजबूर थी।
नहीं
नहीं
नहीं, आपका गुनाह भी आपके ससुर से कुछ कम नहीं है।
क्यों? क्योंकि सिर्फ मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे ऐसे किसी शख्स के सिरे साया पर विश पाए।
आपके ससुर गलत सोच रहे थे, ठीक है, वो सोच रहे थे लड़के और लड़की में फर्क होता है, सोच रहे थे एक नस्ल बढ़ाता है और एक बर्बाद करता है, एक हकीकत है और एक फरेब, एक अपने बाबा की जान है, एक माँ के नाजु नखरे करने वाली। जी हाँ, बिल्कुल गलत सोच रहे थे, लेकिन बिल्कुल सही कर रहे थे। वो चाहते थे कि अपने घर में आपका और आपके बच्चों का एक घर बना दे, वो चाह रहे थे कि उनके मुताबिक परवरिश हो, वो चाह रहे थे कि आपको पुरसुकून जिंदगी गुजारने का मौका दें, और फिर आप सही सोच रही थी, बेटा और बेटी में फर्क ही नहीं है, ये दोनों खुदा की तरफ से तोहफा हैं, दोनों नेमत हैं, दोनों रहमत हैं, दोनों घर की रोशनी हैं। लेकिन आपने गलत अमल किया था, अपने बच्चों को लेकर आप भाग गई थी, एक दादा को उसकी सरपरस्ती से महरूम कर दिया था, अपने और अपने बच्चों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी थी, जाली कागजात बना लिए थे। लेकिन अब हम दो तरह के लोगों के सामने खड़े हैं, एक गलत सोचता है और सही अमल करता है, और एक सही सोचता है लेकिन गलत काम करता है।
दोनों एक जैसे हैं मेरी बहन,
दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो सही तरह से सोचें और सही अमल करें, लेकिन ना तो आप और ना आपके ससुर, दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं था।
अच्छा, अब मुझे क्या करना होगा?
मैं आपके कानूनी मामले के दरमियान नहीं बोलूंगा, आपने कई साल खुद अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी एक जाली शनाख्त से फायदा उठाया है, ये तो अब आपको फैसला करना होगा, उसका क्या करना है, ऐसे ही चलते रहने देना है या नहीं। बहरहाल जुर्म किया है, अगर ऐसे ही चलने देना है तो उसका बदला देना होगा।
अगर ये फैसला कर लें कि आप अपने जुर्म को छुपाएंगी तो उसकी भी सजा मुअय्यन है।
लेकिन शरीयत के बारे में जो मसला आपको दरपेश था, आपकी बेटी का दादा मौजूद था, आपकी बेटी अगर शादी करना चाहे तो उसे लाजमी तौर पर उनकी हिमायत चाहिए होगी, वरना कानून के मुताबिक और शरीयत के हिसाब से ये निकाह बातिल होगा। अलबत्ता इस शर्त पर के आपके ससुर इस वक्त जिंदा होंगे तो। मेरा एक दोस्त है जो डीसी ऑफिस में होता है, कल मैं उससे और पूछ लूंगा कि इन बच्चों के दादा भी जिंदा हैं या नहीं।
कितने रुपए रखूं? नाजगुल, कितने रुपए रखूं इसमें?
दो रखते हैं। खाला, आखिर हुआ क्या है?
कुछ नहीं बेटा, तुम अपना काम करो, अच्छा तुम बताओ कितने पैकेट बनाओगी?
कुछ हुआ है क्या अम्मी?
सर में दर्द हो रहा है।
लेकिन हुआ क्या है, मुझे कुछ तो बताएं अम्मी।
तुम परेशान नहीं हो बेटा, ये ठीक हो जाएगी।
लेकिन मुझे पता तो चले
हुआ क्या
है।
तुम पहले अपना काम करो, मैं इसे दवाई देकर आती हूँ। तुम जाओ, शाबाश।
लेकिन आप शक्ल आप बदल को बदल दीजिए। शादी बातें आपकी बेटी का एक दादा मौजूद है जो उसका सगा शादी शादी तौर पर और कानूनी तौर से माता का अनुदान है, तो आप छुपा सकते
हैं। शक्ति शक्ति अंधा का मौसम
नहीं, आपका गुना का यहाँ विश्वास से कुछ कम नहीं। अपने बच्चों को देखकर हम देखा एक दादा का अपनी सफर से महरूम कर दिया था। जानी का हजार बना ली थी एक भले सोचता से उसका सही समल कर अमल के तो बाप को फैसला करना तक बाहर आ जो जो आपकी बेटी अगर शादी शादी जो से
नहीं,
सताइश की आवाज थी।
तुमने भी सुनी है क्या?
हाँ।
लगता है कि कोई सहन में मौजूद है। रुको। आतिफा यहां आओ, देखो।
ओहो, सताइश, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
आतिफा,
तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो?
आतिफा, ये मैं कैसी हो गई हूँ?
क्या कैसी हो गई हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो।
आतिफा, मैंने मैंने आज तक
मैंने आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी है। मेरे तो दिल में कभी नहीं आया कि एक चिड़िया के बच्चे को भी मरा हुआ देखूं। सारी रात एक इंसान के मरने की तमन्ना कर रही थी। सारी रात में दुआ कर रही थी कि मुर्तजा भाई कल आके बताएंगे कि हशमत फिरदौस मर चुका है। मैं हर रोज हशमत फिरदौस के मरने की दुआएं मांग रही थी। मेरे खुदा है, मैं कितनी बुरी हो गई हूँ।
मेरी बहन हौसला रखो,
कितनी बुरी हो गई हूँ आत्मा मैं।
सब ठीक हो जाएगा सताईश, सब ठीक हो जाएगा। चलो चुप हो जाओ।
लगता है कल रात ठंड लग गई।
सर ये दवा बहुत अच्छी है, इसे पीकर आप आज ही ठीक हो जाएंगे।
मैं और अच्छा जल्द ही मरने वाला हूँ। अगर किसी दिन उठकर देखो कि मुझे कोई दर्द वर्द नहीं है तो समझना कि मैं मर गया।
खुदा ना करे सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये दवा पी लीजिए। अल्लाह शिफा देगा सर, मैं जाकर एक और दवाई लेकर आता हूँ।
तुमने माल बर्फ खाने में जमा कराया?
भाई, रुस्तम भाई।
जी
फिरदौस साहब कहाँ हैं?
वो यहीं पर हैं, कोई काम है। फिरदौस साहब, अफलाकी साहब बुला रहे हैं।
सर ये देखें, ये क्या है?
सर ये वो हैं जिनकी पेमेंट्स नहीं हुई।
अच्छा, साबिर क्यों नहीं गया इस काम को करने के लिए?
पता नहीं सर।
साबिर को फोन मिलाओ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये काम।
साबिर साहब लाइन पर हैं।
साबिर, क्या तुमने मुझसे वकालतनामा नहीं लिखवाया था कि सारे मसाइल, सारे अकाउंट्स और सारे इंश्योरेंस तुम संभालोगे? सुनो तो फिर इन सारी चीजों के नोटिस मेरे पास क्यों आ रहे हैं? तो फिर जाना है तो जल्दी जाओ ना। मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी का मकरूज रहूं, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे नोटिस हो, चाहे अकाउंट्स हो। ठीक है, हाँ ठीक है, खुदा ही जानता है मुझे पसंद नहीं, समझ गए ना?
उस पहले नंबर के ट्रक पर माल लोड करो।
इधर सुनो मेरी बात।
अस्सलाम वालेकुम सर।
यहाँ आओ जरा तुम। सुनो, ये रसीद लेकर तुम मेरे कमरे में जाओगे, इसे दराज में रखोगे
जी,
और मेरी कार की चाबी लेकर आओगे
जी। ठीक है,
जाओ। अरे भाई कहाँ रह गए हो?
जी सर।
क्या कर रहे हो?
आ गया सर।
जल्दी आओ नीचे।
चाबी ढूंढ रहा था सर।
अम्मी जान मैं सोच रही हूँ ये सब ज्यादा डाल दूँ इसमें, बच्चों को ये बहुत पसंद होते हैं ना। अम्मी जान अम्मी जान अम्मी जान
हाँ कहो।
आपने सुना नहीं मैं क्या कह रही थी?
नहीं मेरी बेटी, मैंने नहीं सुना है। क्या कह रही हो?
मैं कह रही थी कि ये इसमें ज्यादा डाल दूं क्योंकि ये बड़ों को नहीं देंगे, ज्यादातर हम बच्चे बच्चियों को देंगे। जो अम्मी
हाँ बोलो।
क्या आप बता सकती हैं क्या हुआ है?
तुम क्या जानना चाह रही हो ये बताओ।
आए बैठे। कल रात से अभी तक आप बहुत परेशान हैं, आपकी तवज्जो किसी और तरफ है, बिल्कुल ऐसी होगी जैसे आप पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो।
मुझ पर कभी भी पहाड़ नहीं टूट सकते, मेरे पहाड़ तुम लोग हो, तुम और तुम्हारा भाई। बस किसी सूरत भी
कोई है? कोई है? कोई है क्या? एक मिनट नीचे चलोगी? मुर्तजा आ गए हैं।
शादी ब्याह में हमेशा ऐसा ही होता है, टेंशन और परेशानी से भरी हुई जिंदगी रहती है, भाग दौड़ होती है, लेकिन जब सब हो जाता है तो इंसान सुकून का सांस लेता है और कहता है ओफो। तुम भी परेशान नहीं हो बेटी, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी।
अस्सलाम
वालेकुम।
सलाम।
मैं ऊपर नाजगुल के पास जा रही हूँ।
नहीं आतिफा, अगर तुम रुक जाओ तो बेहतर होगा। आ जाइए आ जाइए।
बहुत शुक्रिया मुर्तजा भाई, बस यहीं पर बता दें।
ठीक है। हशमत फिरदौस आपके ससुर जिंदा है?
आपको मालूम है वो कहाँ है?
नहीं, लेकिन उन्हें ढूंढना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। पहले आप ये अच्छी तरह फैसला कर लें कि आपको क्या करना है, उन्हें तलाश करना मेरे जिम्मे है।
मैं फैसला कर चुकी हूँ, उनसे अपनी बेटी की शादी की इजाजत ले लूं। मैं नहीं चाहती कि इन मुसीबतों की वजह से मेरी बेटी खुशियों से महरूम रहे। आप उन्हें बस ढूंढ लें। अलबत्ता माफ करिएगा अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो।
नहीं नहीं नहीं, जरूर।
मैं अब चलती हूं।
बहुत सीधी है।
दादा जान आ गए।
इस हुलिये में तुम दोनों उनके सामने नहीं आ जाना। परेशान हो चुका हूँ जब से तुम दोनों के बारे में मुझसे इतनी बातें की हैं।
हम लोग सालगिरह में जा रहे हैं, आज वीकेंड है बाबा जान।
तुम्हारे दादा जान के लिए दोनों जगहों में कोई फर्क नहीं है, और अगर इस तरह तुम अपने दादा जान के सामने आ गई तो वो तुम दोनों का मुंह साबुन से धुलवा देंगे।
आज तो आप भी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं बाबा जान।
बाबा ये बिल्कुल ठीक कह रही है।
वैसे कहाँ जा रहे हैं?
सुनो, तुम लोग चाहती हो कि मैं तुम दोनों को छोड़ दूं, तो इतना मक्खन मत लगाओ। तुम दोनों ऊपर जाओ और कोशिश करना कि तुम उन्हें दिखाई ना दो। जब दादा जान चले जाएं तो गाड़ी में बैठे रहना जब तक मैं ना आ जाऊं।
अच्छा मेरे प्यारे,
चलो
बाबा जान।
चलो,
वैसे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं।
गौर से सुनो, तुम दोनों दादा जान के सामने बिल्कुल नहीं आना। मुझे वैसे भी देर हो गई है, नहीं चाहता कि एक घंटा यहीं फंसा रहूं।
जी
अच्छा ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम सर।
अस्सलाम वालेकुम बाबा जान।
वालेकुम अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं रखना भाई, वो जगह साफ है। सुबह से सफाई कर रही हूँ, थक गई हूँ, एक मिनट रुक जाओ।
ओहो, कहाँ चल दिए? कहीं शादी में जा रहे हो?
नहीं बाबा जान, मैंने उस कंपनी के चीफ डायरेक्टर से मुलाकात का टाइम लिया हुआ है, सोच रहा हूँ उस कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद लूँ।
हाँ, वो जो चीफ डायरेक्टर है, तुम्हारा इतना परफ्यूम कोट पैंट देखकर तब तुम्हें शेयर्स बेचेगा?
कोई काम तो मुझसे नहीं है बाबा जान।
सुनो, बच्चियां कहाँ हैं?
वो लोग तैयार हो रही हैं, मैं अपने साथ उन्हें सालगिरह में ले जा रहा हूँ और खुद ही उन्हें वापस भी ले आऊंगा।
इन लोगों के नीचे सफाई नहीं,
ये काम अच्छा कर रहे हो।
एक मिनट रुक जाओ भाई, कैसर ये यहाँ रख दो।
अरे भाई रख दो इसे यहाँ।
जी अच्छा।
नहीं 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 रुक जाओ, वहाँ नहीं रखना भाई, ये जगह गंदी हो जाएगी। मैं सुबह से सफाई कर रही हूँ। एक मिनट रुक जाओ, रुको रुको भी। हाँ बस ठीक है, यहाँ रख दो।
कह रहा था इतनी भारी चीज नहीं उठाना, तुम्हारे लिए नुकसानदेह। असमत आज तुम ऐसा करो, इन सबका मुरब्बा बना लो।
ठीक है जनाब, आज आप बहुत अच्छे सेब लेकर आए हैं।
सर मैं चलता हूँ।
सुनो, ये चाबी पकड़ो, मेरी कार ले जाओ और सुबह सवेरे मेरे पास आ जाना। हाँ बोलो, क्या हुआ है? तुम तो मुजस्सिमा बनकर मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मुझसे बहुत खौफजदा हो।
नहीं सर।
अच्छा मेरी कार ले जाओ, उसमें अपनी माँ और बहन को बिठाओ और बाहर ले जाकर घुमाओ। कोई आइसक्रीम खिलाओ, कोई कबाब खिलाओ, कोई टिक्का बूटी खिलाओ, या कहीं शॉपिंग पर ले जाओ, या कहीं सैर करा कर ले आओ। कम अज कम उन्हें मालूम हो जाए कि तुम भी अब कुछ कमाने लगे हो।
बहुत बहुत शुक्रिया सर।
तुम जाओ,
अपना ख्याल रखें। मेहरबानी आपकी।
रात में कार यहाँ खड़ी करते हुए घर चले जाना।
आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं चलता हूँ।
बस यहीं रोक दें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा जान, जल्दी आ जाओ भाई।
हाँ बस आ गई।
खुदा
राना, 9:30 बजे तक तुम्हें लेने आ जाऊंगा।
आप फोन कर दीजिएगा, हम नीचे आ जाएंगे।
ठीक है, ख्याल रखना।
खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़। मैं सही लग रही?
हाँ ठीक लग रही हो।
राना हूँ।
मोहम्मद, तुमने ये देखा? खूबसूरत है ना?
बहुत बहुत प्यारा है। अम्मी जान, आपकी दोस्त का घर बहुत बड़ा है, बहुत पैसे वाले हैं, मतलब ये पूरा फ्लोर आपको दे दिया है।
हाँ पूरा फ्लोर हमें दे दिया है। आत्मा खाला बहुत अच्छी हैं।
नाजगुल इसे तुमने इस तरह क्यों फैलाया हुआ है? कम से कम अब इसके पैकेट बना।
अच्छा अम्मी जान आप ये सब छोड़ दें, मैं खुद कर लूंगी, आप छोड़ दें ये सब।
बात नहीं घुमाए अम्मी जान, बात नहीं घुमाए। मैं आज इसलिए यहाँ आया हूँ कि आप लोगों को बाहर ले जाऊँ, तो इसीलिए अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा।
ठीक कह रहा है अम्मी जान, चलते हैं।
बता चुकी हूँ मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी हिम्मत नहीं है।
वाला जान आपने तकलीफ
कोई बात नहीं बेटा,
बहुत बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
आत्मा तुमने ये तकलीफ क्यों की है? मैं खुद बना लेती।
कोई बात नहीं, तुम्हें तो पता है मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है, जब मेरे रिश्ते आया करते थे तो मैं यही करती थी।
इसीलिए कह रहा हूँ आत्मा बाजी, आप ही समझाएं अम्मी को।
आत्मा बाजी नहीं, आत्मा खाला कहो।
जी अच्छा।
क्या अच्छा?
जी अच्छा आत्मा खाला।
ये ठीक है, सुनो या तो प्यार से चली जाओ या फिर मैं जबरदस्ती करूंगी।
आत्मा
आत्मा नहीं आत्मा खाला। नाजगुल तुम भी जाके अपने कपड़े बदल लो और तुम भी जाके अपनी गाड़ी स्टार्ट करो, मैं अम्मी को भेजती हूँ।
बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं
मोहम्मद,
एक मिनट सर यहाँ बैठो।
मेरी कहीं भी जाने की हिम्मत नहीं।
मैं जानती हूँ तुम्हारी हालत को, तुम्हारा बेटा तुम्हें घुमाने के लिए लेकर जाना चाहता है, इसमें नखरे करने की क्या बात है? तुम उसके साथ जाओ, घूम कर आ जाओ ताकि तुम्हारा दिमाग भी फ्रेश हो जाए, ठीक है ना?
अम्मी जान गाड़ी हमेशा मेरे पास ही होती है, मेरे मालिक ने कहा है जब तक तुम कार खरीद नहीं लेते ये कार अपने पास ही रखो।
झूठे कहेंगे।
क्या झूठा हूँ मैं? तो फिर ये क्या है जिसमें तुम बैठी हुई हो? अच्छा तुम रुको मैं तुम्हें कागजात दिखाता हूँ।
जरूरत
नहीं,
नहीं
है मैं
अभी, जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ड्राइविंग पर तवज्जो दो। नाजगुल तुम थोड़ी देर चुप नहीं हो सकती?
जी अच्छा, तुम हमें कहाँ लेके जा रहे हो?
बता दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए नाजगुल साहिबा।
बहुत बहुत शुक्रिया।
अम्मी जान
बहुत बहुत शुक्रिया।
और कुछ चाहिए सर आपको?
बहुत शुक्रिया, बस जल्दी से खाना ले आए, हमें बहुत भूख लगी है।
ठीक है सर।
मौसिन मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हें पहली दफा यहीं लेके आऊंगा।
अच्छा कहीं उसका इस रेस्टोरेंट में कोई पार्टनर तो नहीं है?
अरे इससे उसका क्या ताल्लुक है, वो तो मुझे कह रहा था मैं तुम्हें यहीं लेके आऊंगा।
अच्छा चलो अब अपने भाई के साथ आ गई, ये लो खा लो।
बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई।
कोई बात नहीं।
हेलो
मैं हूँ सताइश।
ताहिर, ताहिर कहाँ पर हो तुम?
मेरी तो जान ही निकल गई थी, कहाँ पर है आप ताहिर? क्या हुआ है?
देखो सताइश अभी कुछ भी नहीं पूछो, मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगा, अभी गौर से मेरी बात सुनो।
मैं सुन रही हूँ, आप बोले।
वो जिस रेस्टोरेंट में हम शादी की पहली रात गए थे, कबाब और पोटियां खाई थी, याद है? सुन रही हो ना?
हाँ हाँ।
जितना भी पैसा घर में मौजूद है अपने साथ लेकर वहाँ आ जाना, ठीक है? सताइश।
ताहिर
वहीं रुको, यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना, वहाँ जाके बैठो।
अम्मी जान ये जगह आपको पसंद आई? बहुत अच्छी जगह है ना?
पहले आ चुकी हूँ यहाँ।
यहाँ पर कब?
बहुत साल पहले।
किसके साथ यहाँ पर आई थी?
तुम्हारे बाबा के साथ।
मगर ताहिर मेरी बात
तुम समझ क्यों नहीं रही हो सताइश? उन्होंने मेरी गाड़ी से अफ्यून बरामद की है, मुझे नहीं मालूम किसकी है, नहीं मालूम किसने वहाँ रखी है, मगर मसले की बात यह है कि मेरी गाड़ी से बरामद हुई है।
तो आप क्या करना चाहते हैं?
मैं भागना चाहता हूँ।
कहाँ पर?
बॉर्डर के उस पार, मगर आखिरी रास्ता यही है मेरे पास जो बचा है। मैं वहाँ जाकर कुछ ऐसा कर दूंगा कि तुम और बच्चे मेरे पास आ जाना वहाँ पे। सिर्फ गौर से सुनो सताइश, चाहे जैसे भी हालात हो जाए, यहाँ तक कि रात को खाने को कुछ भी ना हो, लेकिन उस घर का दरवाजा तुम कभी मत बचाना। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों पर उनका साया भी पड़े।
हम तो सोच रहे थे कि आप और बाबा कभी भी तहरान नहीं आएंगे।
उस आखिरी दफा के बाद आप क्या फिर यहाँ पे कभी नहीं आई थी?
हम फिर उसके बाद एक साथ नहीं रह सके, आखिरी दफा था कि एक साथ आए थे।
उसके बाद वो जलजला आ गया।
हाँ सही कह रहे हो, उसके बाद वो जलजला आ गया। अच्छा छोड़ो इन बातों को, यहाँ आने पर खुशी मनाओ, ये बहुत अच्छी जगह है। ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है।
अम्मी कहाँ जा रही हैं?
मैं जरा वहां से होकर आती हूँ।
ख्याल से जाइएगा। सोच रहा हूँ नाजगुल। अगर एक खूबसूरत सी अच्छी सी लड़की हो तो
अच्छा,
मतलब थोड़ी सी अच्छी हो, मतलब थोड़ी खूबसूरत भी हो,
अच्छा,
फिर कोई शख्स हो जो उसको बहुत पसंद भी करता हो,
अच्छा,
फिर वो शख्स ठीक है ना? हाँ
ठीक है।
कहना ये चाह रहा हूँ कि वो लड़की किसी गलत रास्ते पर चल रही हो, मतलब उसकी कोई बड़ी बहन उसे गलत रास्ते पर चला रही हो, मतलब एक बड़ी बहन एक छोटी बहन।
हाँ तो?
तो उसे क्या करना चाहिए?
कुछ नहीं, एक मिलाकर उसके सर पर दे जो लड़की गलत रास्ते पे चल रही हो, फिर किसी ऐसी लड़की के पास जाए जो ना गलत हो और ना उसकी कोई गलत बहन हो, बस खत्म बात।
तुम सुधरने वाली नहीं हो।
वाह,
मेरी गलती है जो इतना खास और अहम मसला तुमसे पूछने बैठ गया हूँ।
इसमें ऐसा क्या खास है?
बहुत खास है नाजगुल।
क्या चीज बहुत खास है?
अगर सच पूछे तो अम्मी जान, लगता है कि आपके प्यारे बेटे का इरादा है कि
नाजगुल के लिए उसकी शादी के लिए एक छोटा सा तोहफा खरीदा है, सोचा दिखा दूं पसंद आता है या नहीं, अगर पसंद आया तो फिर ठीक है, अगर नहीं आया तो ले जाकर तब्दील करवा लूँ।
मेरे लिए तोहफा खरीदा है?
जी हाँ, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो,
सच में?
जी हाँ, तुम इसे खोल सकती हो।
ओ मोहम्मद, ये कितना प्यारा है। जरा देखिए अम्मी जान।
बहुत बहुत।
मुझे नहीं पता था तुम मेरे इतने अच्छे भाई हो। कितना खूबसूरत है।
तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। सालगिरह मुबारक हो।
तुम्हें कैसे मालूम हुआ? साविर, मतलब सच में तुम मेरी बर्थडे का गिफ्ट लाए?
ये एक छोटा सा तोहफा है। मैं चाहता हूँ कि हम किसी आलिशान जगह चलें, ताकि सारी रात मैं तुम पर खुशियाँ निछावर कर सकूँ। लेकिन खाने के बाद मुझे अपनी बेटियों को लेने जाना है, वो पार्टी में गई हैं।
बिल्कुल भी ऐसी बातें मत करो, आज रात मेरी बर्थडे है और तुम।
मैं वादा करता हूँ कल तुम्हें एक जबरदस्त पार्टी दूंगा।
कल वल की बात नहीं है, आज रात बर्थडे है मेरी। इतना भी अब घड़ी को मत देखो।
तुम इसे पहनोगी नहीं?
तुम कहीं नहीं जा रहे।
अच्छा ठीक है।
क्या तुम अपना मोबाइल रखोगे?
अच्छा ठीक है भाई, मैं अपनी बेटियों को छुड़वाने का इंतजाम कर रहा हूँ।
खूबसूरत है ना?
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
बाबा जान, मेरी जो चीफ डायरेक्टर से मीटिंग चल रही थी वो खत्म नहीं हुई है।
सुबह से तुम्हें चीफ डायरेक्टर ने पकड़ा हुआ है, तुम 24 घंटे वाली टैक्सी बन गए।
बाबा जान, मीटिंग जैसे ही खत्म हो जाएगी मैं आ जाऊंगा। अच्छा, लड़कियां दावत में गई हुई हैं, उनकी एक दोस्त की सालगिरह है, मैं आपको एक तकलीफ देना चाहता हूँ।
हाँ बोलो, क्या बात है?
शुक्रिया।
अम्मी जान बहुत खूबसूरत है ये, इसे गले में पहन लूँ क्या?
तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी के लिए लाया है, इसे बॉक्स में रख दो।
जी अच्छा। कौन है? कहीं वो तो नहीं जो अचानक गलत रास्ते पर चल पड़ता है।
मेरे बॉस।
अच्छा अच्छा।
अस्सलाम वालेकुम सर।
कहाँ हो मोहम्मद?
कहीं नहीं, अपनी अम्मी और बहन के साथ खाना खाने बाहर आया हुआ हूँ।
अच्छा, जल्दी से खा लो, उसके बाद लड़कियों को लेने चले जाना।
जी अच्छा सर, ठीक है।
उनका एड्रेस लिख लो।
जी एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, मैं पेन और कागज ले लूँ। एक मिनट होल्ड। कोई कागज पेन दे। जी बोलें सर। जी अच्छा, जी जी अच्छा, ठीक है, खुदा हाफिज। मेरे बॉस थे, बता चुका हूं मैं अगर वहां नहीं हूं तो दरअसल सब काम बंद हो जाते हैं।
मतलब तुम चले जाओगे?
नहीं भाई, ऐसा नहीं है,
लेकिन मैं थकी हुई हूं और हिम्मत भी नहीं है। नाजगुल को भी बहुत काम करने हैं, जल्दी चलें अच्छा होगा।
ठीक है, अब अगर आप चाहती हैं तो ठीक है, बस जल्दी खाएं फिर चलते हैं। माफ कीजिएगा, मैं फिरदौस साहब के घर से आया हूँ। लैला साहिबा और अच्छा ठीक है, ठीक है।
जाके क्या
नहीं
करूं?
बहुत देर हो रही है, हम जा रहे हैं, बहुत मजा आया।
ये कौन है? कहीं ये लड़का खबर बना तो नहीं देगा?
हाँ हमारा ड्राइवर है, कोई बात नहीं।
अच्छा फिर ठीक है।
गाड़ी में बैठो, हम अभी आते हैं।
जाओ जाके गाड़ी में बैठो।
चलो
मैं इधर जाती तो खुद भी उधर आ जाता। मैंने कहा छोड़ दो भाई, पागल हैं दोनों बिल्कुल।
हाँ पागल हैं। पता है मुझसे क्या कह रहा था?
पागल हैं दोनों।
ये लो जरा उसे देखो, उसका मास्क जरा देखो।
तुम कुछ भूल रही हो, जरा शीशा नीचे करो।
एक मिनट, शीशा नीचे करना, क्या कह रहे हैं वो?
ये लो ये लो।
हाँ
ये
दो,
ले लो,
दे दो।
ये लो। लो ये लो लो।
अरे कहाँ जा रहे हो?
पकड़ो पकड़ो, ऐसे पकड़ो।
क्या कर रहे हो, आहिस्ते चलाओ।
हाँ ये ले लो, तुम्हारा है। रख लो इसे, रख लो रख लो।
देखो कितनी स्पीड से चला रहा है। लाओ मुझे देना जरा।
तुम्हारा हिस्सा बाद में लेना।
तुम तो हमेशा मेरा हिस्सा बगैर पूछे ही पी जाती हो।
क्या कर रहे हो, आहिस्ता चलाओ। तुमसे
आराम से चलाओ।
क्या कर रहे हो, आहिस्ता चलाओ। तुम क्या कर रहे हो, आराम से चलाओ। मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम गाड़ी साइड पर रहो।
क्या हो गया ऐसे, ऐसे क्यों चला रहा है ये?
तुम क्या कर रहे हो, आहिस्ता चलाओ,
आहिस्ता चलाओ, रुक जाओ।
मैंने कहा आहिस्ता चलाओ।
क्या कर रहा है ये, आहिस्ता चलाओ। क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है ये?
लाओ मुझे दो।
तुम्हें क्या हो गया है, तमीज से बात करो।
मैंने कहा मुझे दो। अगली दफा तुम्हारी गर्दन पर मार दूंगा, समझे?
ये तुमने क्या कह दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये?
खामोश रहो।
मुझसे कहा खामोश रहो, तुमने सुना? इसने मुझसे कहा खामोश रहो।
मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, सिर्फ तुम ये बताओ, तुमने लड़कियों को कहा खामोश रहो, हाँ या नहीं?
अगर आपको कुछ पूछना ही है तो
मेरे सामने इतना तो मत करो। खामोश रहो कहा था या नहीं?
जी सर।
कहा था? आज तुम एक लावारिस गरीब बेहसियत लड़के ने हशमत फिरदौस की लड़कियों से कहा खामोश रहो, तुम्हारे बाप की खबर? ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इसका मतलब वो ठीक कह रही है। अपने हाथों से तुमने उनके दोस्तों की गाड़ी का शीशा भी तोड़ा है।
जी सर।
सुनो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था या तुम पैदाइशी ऐसे ही हो? जिस शख्स को शीशा टूटकर लगा है वो तुम्हारी वजह से सुबह से अस्पताल में है। तुम्हारी उस बेवकूफी की वजह से मामला पुलिस तक पहुंच गया है। तुम जैसे पागल बदतमीज बददिमाग लड़के की वजह से मेरी पोतियां भी पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही हैं। क्या है, गर्दन में अकड़ आ गई है? हाँ तुम्हारे बाजू में ताकत ज्यादा आ गई है। सुनो, कुछ नहीं जानते तुम। तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर बंदे इस मार्केट में मौजूद हैं। सिर्फ दो बंदों ने तुम्हें कुछ खिलाकर तुम्हारी हालत बुरी कर दी थी। लॉकर को तुमने बचाया, यह अच्छा काम था, लेकिन मेरी पोतियों के साथ जो कुछ भी हुआ है, दिल चाहता है कि इसी वक्त तुम्हें अपनी इस मार्केट के गेट से उल्टा लटका दूं।
मैं नहीं चाहता कि उन दोनों को।
अपनी आवाज को बंद रखो, इतना मैं नहीं करो। तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। मेरी गलती थी जो मैंने तुमको सर पर चढ़ा लिया है। गलती मेरी थी। रुस्तम, रुस्तम।
जी सर।
इस लड़के का हिसाब किताब लेकर आओ। इसकी अब यहां से छुट्टी होने वाली है।
जी सर, समझ गया मैं।
सुनो, सिर्फ एक बात याद रखना और गौर से सुनना। जितना भी तुम में गुरूर होगा, जितनी भी तुम में अकड़ होगी, इन सबको एक रस्सी में इतना मजबूत बांध कर रखो कि कहीं मगरूर ना हो जाओ। अपनी जवानी पर इतना गुरूर नहीं करो।
मैं अपनी जवानी पर गुरूर नहीं कर रहा हूं।
तो तुम्हें क्या मौत आई थी कि उन लड़कों की गाड़ी के साथ तुमने ये किया?
वो लड़के चाह रहे थे कि आपकी पोतियों को ड्रग्स दें।
झूठ बोल रहे हो, मुसलसल झूठ बोल रहे हो। मेरी पोतियों को तो यह भी नहीं मालूम कि वो गंदगी क्या चीज है।
उन्हीं से पूछ ले।
पूछ चुका हूं, सुबह सवेरे पूछ चुका हूं। बता रही थी कि तुम पागल हो गए थे और तुमने ये सब कुछ किया।
उन्होंने झूठ बोला है।
तुम झूठ बोल रहे हो।
आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं और वो सच बोल रही हैं?
इसलिए कि वो मेरी पोतियां हैं, वो मेरा खून है। मेरा खून मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसका हिसाब किताब लेकर आए हो?
नहीं सर।
तो फिर खाली हाथ क्यों आए हो?
सर, बाहर एक खातून आई है जो आपसे मिलना चाहती
है। देख रहे हो, मैं मसरूफ हूँ। पूछो क्या मसला है। अगर कोई मदद मांग रही है, देकर उन्हें भेज दो।
लेकिन वो कह रही है आपसे मिलना
है। नहीं है तो कहने दो, मैं मसरूफ हूँ। कह दो कल आ जाना और इसका हिसाब लेकर आओ।
जैसे आपकी मर्जी।
از عشق میگم تو هم بگو رفتنت خواب بود.
بشین پای حرفای من، بشین دل بده گوش کن، در و رو دنیا ببند، جهانو فراموش کن. فقط من، فقط تو، فقط من و تو میارزیم به هم. یه شب زندگی بی تو رو باید قیدشو میزدم. فقط من، فقط تو، فقط من و تو میارزیم به هم. یه شب زندگی بی تو رو باید قیدشو میزدم. نبودی ببینی چقدر زمان بی تو غمگین گذشت. تو رویای من غم نبود ولی تلخ و شیرین گذشت. نبودی ببینی عذاب چطور میکشه آدم ها. باید از یه جایی به بعد ادامه نمیدادم و ادامه نمیدادم و ادامه نمیدادم و رسیدم به جایی که عشق نبودش یکم بود شد. زمین زیر پام خالی و یه آن زندگیم دود شد. خوشی رفت و شادی نمود، دلم شور فردا رو زد. گذشته بران تازه شد مثل داغ روزای بعد. میدونم تلاشم یه روز یه جایی اثر میکنه. ببین تا کجا تا چه حد یه عاشق خطر میکنه.